सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यारुज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ
ಜಯ ಬೋಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿಯಮ ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜಯ ಬೋಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ಗುರು ಶ್ರೀ ಋಷಭ ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಮುನಿ ಸಂಘ ಕೀ ಜಯ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು
प्रथम पाठ का सार ज्ञात हो चुका है। एक बात अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम कामना रहित होकर धर्म के अनुष्ठानों को धर्म की क्रियाओं को करते हैं केवल उसी समय कर्मों की निर्जरा व संवर की जो संख्या बताई थी वो 41 है 41 प्रकृतियां हैं कामना रहित होकर के धर्मानुष्ठान करने वाले भव्य जीव को 41 अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता उनका संवर होता है वे कर्म कौन कौन से हैं और किस कारण से इनका बंद नहीं होता, संवर हो जाता है, ये कारण समझने के योग्य है। ध्यान इसी बात को रखना है। कामना रहित होते ही 41 कर्मों का संवर होता है और कामना सहित होते ही 41 कर्मों का आश्रय और बंध प्रारंभ होता है। यही कारण है कि 41 कर्मों के बंध में और आश्रय में अनंतानुबंधी कषाय का उदय होने से जीव को प्रथम गुणस्थान होता है। गुणस्थान कौन सा? पहला। प्रथम गुणस्थान होता है। जब प्रथम गुणस्थान होता है तो 41 कर्मों की आवाज आती है। एक तरफ मिथ्यात्व कर्म का उदय और एक तरफ अनंतानुबंधी कषाय का उदय, दोनों तरफ से आवाज शुरू होती है। अभी आ रही थी ना आवाज ऐसी, जीव को अशांति उत्पन्न होती है। इस अशांति के कारण जीव को आकुल व्याकुल परिणाम होता रहता है। मंदिर में जाएं तब भी शांति नहीं, तीर्थ क्षेत्र पर जाएं तब भी शांति नहीं। जीवन के संकटों को दूर करने में अपने जीवन को लगा लेता है। कहीं भी जाए, कामना को लेकर के जाता है, तो प्रथम गुणस्थान में एक तरफ मिथ्यात्व का उदय और दूसरी तरफ 25 कषायों का उदय, 26 कर्मों का उदय होकर जीव को परेशानी उत्पन्न होती है, शांति नहीं मिल पाती। कामना सहित जीव कभी शांति से रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि कामना ही एक अशांति है ना, और कामना से मुक्त हो जाना ये शांति है। शांति है तो कामना नहीं, और कामना है तो शांति नहीं। शांति पाने के लिए ही धर्म का सहारा लिया जाता है। जिनेंद्र भगवान का जो धर्म का मार्ग है, ये शांति को पाने के लिए है। अशांति के कारणीभूत सांसारिक पदार्थों को पाने में शांति कहाँ है? यदि मिल भी गए तो शांति भी मिली उसके साथ, तो क्षणिक मिली, शाश्वत शांति की उपलब्धि नहीं हुई। मिली भी तो क्षणिक मिली, मिलते ही कुछ आनंद का क्षण आया, और मिलने के उपरांत उसी के निमित्त से पुनः अशांति प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि सांसारिक पदार्थ हमें शांत बैठने नहीं देते। धन, संपत्ति, वैभव, जो भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं इनके बीच रहते हुए क्या हम निर्विकल्प रह सकते हैं? यही कारण है जैन परंपरा में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं इन्होंने इन्हीं पदार्थों से मुक्त होने का प्रयास किया और उनका प्रयास इतना सफल रहा, चेतन अचेतन पदार्थों को छोड़कर निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लेने के पश्चात उनको शांति मिली, क्षणिक सुख वाली शांति नहीं बल्कि शाश्वत सुख वाली शांति की उपलब्धि हो गई। ये सही है ना? बाह्य पदार्थों को त्यागने के बाद ही उनको शाश्वत सुख और शांति की उपलब्धि हुई, ये सही है ना? इसमें हम लोगों को विश्वास भी होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पदार्थों के इकट्ठे करने में शांति मिलेगी या पदार्थों के त्याग में शांति मिलेगी? त्याग में। फिर भगवान हमारे लिए कौन से माध्यम हैं? त्याग के माध्यम हैं या संग्रह करने के माध्यम हैं? भगवान के पास जाकर हम भौतिक सुखों की कामना करते हुए, इच्छा रखते हुए निवेदन करेंगे कि हे भगवान, हमारे लिए वो पदार्थ हो जाए, ये वस्तु हो जाए, ये वैभव हो जाए, ऐसी धन संपत्ति हो जाए। तो हम भगवान के पास पहुंच गए तो संग्रह की प्रवृत्ति को लेकर के, संग्रह की बुद्धि से हम पहुंच गए क्या त्याग की बुद्धि से पहुंच गए? संग्रह की बुद्धि से पहुंच गए। जो संग्रह की बुद्धि से पहुंचेगा उनको क्या भगवान के चरणों में जाने के पश्चात भी शांति मिल सकेगी? नहीं मिलेगी। मंदिर में जाए तो शांति नहीं, घर में रहे तो शांति नहीं। बस एक ही क्वेश्चन मार्क है, जीवन के लिए जो अभाव हुआ है उस अभाव की पूर्ति के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे जीव अज्ञान की कोटि में आते हैं, वो जीव अज्ञानी कहलाते हैं। हमको ज्ञानी बनना है या अज्ञानी अभी ठहराना है, ज्ञानी बन के चले या अज्ञानी बन करके चले, अभी कुछ तय करना है। तय के पश्चात फिर यह हम बात चर्चा कर सकते हैं कि 41 प्रकृतियों का संवर हमको करना है या आश्रय और बंद को जारी रखना है। संवर और निर्जरा करना चाहते हैं तो मंदिर में जाए तो शांति के लिए जाएं, मंदिर जाए तो त्याग के उद्देश्य को लेकर के जाएं। मंदिर में जाकर के हमें कुछ छोड़ के आना होता है, इकट्ठे करके लाना नहीं होता। अपन किस बुद्धि से जाते थे? अज्ञान अवस्था में जाते थे, अभी नहीं जा रहे हैं। किस उद्देश्य से जाते थे? कामना को लेकर, इकट्ठे करने की बुद्धि कामना की बुद्धि। दो ही पदार्थ हैं, चेतन और अचेतन, इन्हीं पदार्थों का अभाव हमारे जीवन में होता है और इन्हीं की पूर्ति के लिए मंदिर भी जाने लग जाए तो मंदिर भी अधर्म ही करने का स्थान हो गया। क्या धर्म करने का स्थान बना? कामना अगर लेके गए तो धर्म हुआ क्या अधर्म हुआ? अधर्म हुआ। तो भगवान के पवित्र मंगलमय मंदिर में जाकर यदि हमारे मन में कामना मौजूद है तो हम भी अपवित्र हैं और हम अपनी आत्मा को अपवित्र बनाकर मंदिर प्रवेश कर गए तो मंदिर क्या पवित्र रहा? कामना सूतक है आत्मा का, शरीर का सूतक तो मरण जन्म आदि से होता है। शरीर का सूतक बाहरी सूतक है और बाह्य सूतक है, पर मन की और आत्मा का, मन का और आत्मा का सूतक कौन सा है? कामना। इस कामना के सूतक को दूर किए बिना आत्मा पवित्र नहीं, और आत्मा को पवित्र बनाकर मंदिर में ले जाए बिना मंदिर पवित्र नहीं। मंदिर भी अपवित्र हुआ, आत्मा भी अपवित्र। मंदिर तब अपवित्र जब आत्मा अपवित्र, आत्मा में सूतक की उत्पत्ति हो गई तो मंदिर में जाकर हम मंदिर में भगवान को ही छेड़छाड़ कर देते, स्वयं अपवित्र हैं और भगवान पवित्र हैं। भगवान पवित्र होने से मंदिर पवित्र है। अब सीधा हम मंदिर में जाकर भगवान को ही अटैक कर देते हैं, भगवान बताओ आप ही मालिक, सबका मालिक एक आप ही हैं, वीतरागी हैं, तीन लोक के नाथ हैं, शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, आपके पास भरपूर ज्ञान है, आपकी आत्मा पवित्र है, लेकिन हम जैसे अपवित्र लोगों को पवित्र करो, भक्त देखो कैसा क्या करता है, भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है और कामना को लेकर के प्रवेश करता है और भगवान से कहता है कि हम सबको पवित्र करो। भगवान कहते हैं पवित्र मैं कैसे कर सकता, तुम अपवित्र बन करके आए हो, कामना को छोड़ोगे तो पवित्र बनोगे, मंदिर भी पवित्र रहेगा, मैं भी निर्विकल्प रहूंगा। इतनी सारी कामनाओं को लेकर के आए हो, मुझे विकल्पित कर रहे हो और तुम्हारे विकल्प के चक्कर में मैं भी पड़ जाऊं तो तुम में और हम में अंतर भी क्या है? जो दूसरे के विकल्प को दूर करे वो निर्विकल्प रह सकेगा क्या? भगवान केवल ज्ञानी, भगवान वीतरागी, निर्विकल्प होते हैं क्या? सविकल्प होते हैं, सदा होते हैं क्या? भक्तों के आने पर सविकल्प होते हैं और भक्तों के चले जाने पर निर्विकल्प रहते हैं? सदा निर्विकल्प वीतरागी परमात्मा अरहंत देव सदा निर्विकल्प रहते हैं, सदा। उनको सविकल्प बनाने की शक्ति भक्तों के भीतर नहीं हैं, उनके आत्मा की तरंगों को संविकल्प कर दें, ये शक्ति किसी के पास भी नहीं है। आप कितना भी कहो भगवान से, वीतरागी परमात्मा से, हे भगवान मुझे वैसा होने दो, ऐसा करो वैसा करो, भगवान जगत का कर्ता धर्ता होते ही नहीं। और जो जगत का कर्ता धर्ता होते हैं वो भगवान नहीं। क्या भगवान कहोगे? दुनिया का समाल सार उनके ऊपर डिपेंड हो और वो दुनिया को संभालते हों, भक्तों के आने पर उनको उनकी रक्षा का विकल्प हो उठता हो, उनको भोग वैभव आदि को प्रदान करने का विकल्प भगवान के मन में जागृत होता हो, ऐसे भगवान को क्या हम भगवान कहेंगे? ऐसे भी भगवान क्या संसार में हैं? जो संसार के सारी कामनाओं को दूर करने के लिए बैठे हों, तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग अपने कामना को लेकर के भगवान के मंदिर में पहुंच जाते हैं, तो इनका पहुंचना वास्तव में व्यर्थ है या सार्थक है? ये सब दार्शनिक बातें हैं, इस पर भक्त विचार नहीं करते। भगवान कौन है, उनका कार्य क्या है, क्या करते हैं और क्या नहीं करते, और हम कौन हैं, क्या मन में विचारधारा लेकर के भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान हमारे प्रति क्या कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे, इसका विचार भी नहीं होता और मंदिर में पहुंच जाते हैं और भगवान को छेड़छाड़ कर देते। जो परम वीतरागी हैं, जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, उनको लेकर के हम विकल्प करने लगते हैं। भगवान आप ही मालिक, हमारे आए हुए संकट को टालो, हमको ये होना वो होना, धन होना संपत्ति होना, पुत्र होना पुत्री होना, घर परिवार सुख में होना, इन्हीं बातों को लेकर के, कामना को लेकर के भक्त जन भगवान के पास पहुंचते रहते हैं। ये 99% सब जगह होता है, ये सही है ना? तो ये व्यर्थ है या सार्थक है? फिर ऐसा क्यों पहुंचते? अज्ञान के कारण। रत्नकरणक श्रावकाचार ग्रंथ में समंतभद्र आचार्य ने लिखा है, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना वास्तविक प्रभावना है, चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो। गुरु और भगवान दोनों का कर्तव्य है संसारी जीवों के पास जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करे। वास्तव में उसको जो वास्तविक मार्ग है उसको प्रदर्शित करे, व्यर्थ के मार्ग से उनको हटाएं, ज्ञान प्रदान करें, ज्ञान के प्रकाश से उनका आत्मा, उनकी आत्मा जगमगा उठे, ज्ञान से प्रकाशित हो, कल्याण हो, उसको वास्तविक शांति मिले, वास्तविक मार्ग मिले, पथ मिले, ये भगवान का भी कर्तव्य है और गुरु का भी कर्तव्य है। गुरु शिष्यों को कौन सा ज्ञान दे, अज्ञान का या ज्ञान का? ज्ञान का। तो आज ज्ञान का ही ज्ञान दिया जा रहा है और इस ज्ञान से आपको यदि वास्तव में सच्चा पथ, सच्चा मार्ग मिल गया तो जिससे आप बहुत काल से विकल्पित हैं वे विकल्प स्वयं दूर होने वाले हैं, वे अभाव, अभाव की पूर्ति स्वयं ऑटोमेटिक अपने आप होने वाला है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही क्या कहाँ है। भगवान के मंदिर में यदि हम निर्विकल्प होकर जाने की कला सीख लें तो भौतिक सुख संपदा की कमी पड़ेगी क्या? और कामना को लेकर के यदि भगवान के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो क्या उनकी आपूर्ति हो सकेगी क्या? तो कौन सा कर्तव्य बनेगा? कामना रहित होकर के ही हम प्रवेश करें। क्या आप सभी संकल्प कर सकते हैं इस बात की कि कामना रहित होकर के ही हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करेंगे? कामना सूतक है, इस सूतक को हमेशा के लिए दूर करेंगे, इस सूतक से हम हमेशा के लिए ही मुक्त हो जाएंगे। क्या संकल्प करेंगे, कामना को सूतक समझेंगे? सांसारिक भोग वैभव की प्राप्ति के लिए मंदिर में प्रवेश करना ही नहीं, इससे मंदिर भी अपवित्र होगा, स्वयं की आत्मा भी अपवित्र होगी। और यदि इस सूतक को दूर करके पवित्र भावनाओं के साथ, कामना रहित परिणामों के साथ यदि मंदिर प्रवेश होगा तो मंदिर भी पवित्र होगा और आत्मा भी पवित्र होगी। मंदिर तो पवित्र है ही, पर पवित्र आत्माओं के प्रवेश से मंदिर की पवित्रता और बढ़ेगी। ऐसे एक भक्त प्रवेश किया, दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी किया और सबके सब भगवान के भक्त पवित्र ही पवित्र थे, तो मंदिर की पवित्रता बढ़ती जाएगी, उसका अतिशय बढ़ता जाएगा क्या घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हमें मंदिर की पवित्रता की रक्षा भी करनी है, तो कामना मुक्त होकर के ही हम जाएं मंदिर में। ऐसा कोई एक भजन है, उसमें बोलते भी हैं, हे भगवान मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। है भजन, कभी सुना है? बहुत ही अच्छा है, किसी बुद्धिमान ने ही उस भजन को बनाया है। जिसने भी बनाया हो उस कवि के लिए ये विकल्प हुआ होगा कि इतने सारे लोग कामना को लेकर के मंदिर में जाएंगे तो क्या होगा मंदिरों का, सारा अतिशय घट जाएगा, सारे मंदिर अपवित्र हो जाएंगे, ऐसी चिंता हुई होगी। इसलिए उन्होंने लिखा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर, ये चादर कौन सी चादर? कामना की चादर। कामना की चादर को ओढ़ करके भगवान के मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो मंदिर अपवित्र होता है। भगवान तो पवित्र हैं, भगवान की आत्मा को तो अपवित्र कोई नहीं कर सकता, तो मंदिर तो मंदिर है ना, मंदिर अपवित्र होगा। क्यों अपवित्र होगा? इसलिए कि भक्त खाली नहीं जाएगा, अपने हाथों में कुछ ले जाएगा अपनी कामना की पूर्ति के लिए, कुछ भगवान को दे करके भगवान को पहले संतुष्ट करने का प्रयास करेगा, पहले भगवान की झोली भरेगा, फिर बाद में बड़ी सी बड़ी झोली लेकर के फैला करके बैठेगा, कामना करेगा, हे भगवान आपकी झोली तो मैंने भर लिया, अब हमारी झोली आप भरो। ऐसा कार्य मंदिरों में जाकर के होता कि नहीं? होता है, भक्तों के माध्यम से झोली फैला करके बैठता है, कुछ चढ़ावा करता है, क्या क्या करता है वहां जाकर के ही ये दृश्य देखा जा सकता है। कुछ भी चढ़ाएगा, क्या क्या चढ़ाएगा, क्या क्या चढ़ाता है भक्त? केला चढ़ाएगा, नारियल चढ़ाएगा, नारियल फोड़ेगा, नारियल भी फोड़ेगा, माता भी फोड़ेगा, नहीं मिला तो और अंधकार बड़ा और अज्ञान बड़ा, तो नारियल को चढ़ाता चढ़ाता बलि भी चढ़ाना शुरू कर देगा। अगर कोई अज्ञानी अंधा व्यक्ति की ये बात फैला दें कि नारियल फोड़ने से कुछ कामना की पूर्ति नहीं होने वाली है, भगवान की या इस देवता की ये आशा है कि आप बलि चढ़ाएं, अज्ञानी लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। कोई एक छोटा सा सामान्य व्यक्ति भी कह दें तो पकड़ लेंगे, पाप की बातें बहुत जल्दी पकड़ में आती है, तुरंत आचरण में आता है, पर धर्म की बातें और पुण्य की बातें, सही बातें और सत्य बातें जल्दी पकड़ में नहीं आती। हजार बार समझाने पर भी उसके संस्कार नहीं आते। अगर कोई ये कह दें कि बलि चढ़ाने से आपके सबके मन की पूर्ति हो जाएगी, कह दें तो बलि भी शुरू हो सकती है, तो मंदिर अपवित्र होगा या पवित्र रहेगा? नारियल फोड़ेंगे, मंदिर पवित्र रह सकेगा क्या? अपवित्र होगा। फल फूल चढ़ाएंगे, गंदगी मचाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, जीव इकट्ठे होंगे, चींटियां इकट्ठे होंगी, हिंसा प्रारंभ होगा, वहां की स्वच्छता समाप्त हो जाएगी, तो इस स्वच्छता के समाप्त होने से हिंसा और बढ़ेगी, और हिंसा बढ़ती जाएगी तो मंदिर अहिंसा का मंदिर या हिंसा का रूप ले लें तो मंदिर अपवित्र रहा कि पवित्र रहा? अपवित्र रहा। इसलिए ऐसे भक्त जाकर के मंदिर को पवित्र नहीं रख सकते। उद्बत्ती लगाएंगे ना, मालूम पेड़ा चढ़ाएंगे, उनको ये भी मालूम नहीं कि पेड़ा भगवान खाते भी कि नहीं। अच्छी से अच्छी चीज ले जाएंगे, चढ़ाएंगे, कितना अंधकार है। ये सब अंधकार किसका, अज्ञान का, समझदारी का या अनजान अवस्था का? अज्ञान क्या है? ये अज्ञान के कारण से ये सब कुछ है। और वीतरागी परमात्मा ने जो हम लोगों को उपदेश दिया है, और उन उपदेशों को जो वर्तमान में पंचम काल होते हुए भी गुरुओं के माध्यम से आप लोगों को अमृत कण मिल रहे हैं, अमृत सूत्र मिल रहे हैं, जीवन जीने के, धर्ममय जीवन जीने के सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है अपना। ऐसा कोई रास्ता बता सकेगा? सोचो, विपरीत रास्ता बताने वाले तो दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, कदम कदम पर निमित्त वो मिलेंगे, परंतु सच्चा रास्ता बताने वाले कितने हैं? गिन के बताओ कहां कहां पर हैं और कितने। गुरु ही बता सकते ये सही हैं, पर ऐसे गुरुओं की संख्या भी तो बढ़ना जरूरी है ना। तो ऐसी संख्या बढ़ने के लिए पहले भक्तों की संख्या बढ़ना होगा। भक्तों की संख्या बढ़े तो गुरुओं की संख्या भी बढ़ेगी। गुरु बनते हैं तो भक्तों के बीच में से कोई ऊपर आकर के गुरु बनते हैं ना। आज भक्त सही रहेगा तो वो गुरु बनने के बाद गुरु भी सही निकलेंगे। भक्त ही गलत है और वो गुरु के स्थान पर ऊपर आ गए, क्या रास्ता बताएंगे? मंदिर को पवित्र बनाने का या अपवित्र बनाने का, कौन सा रास्ता दिखाएंगे? तो जैसे शिष्य वैसे गुरु, जैसे भक्त वैसे गुरु, क्योंकि वही गुरु पहले भक्त थे और वही भक्त ज्ञान के बिना गुरु बन गए, तो कौन सा रास्ता बताएंगे? यही समझना है अपने को। जिम्मेदारी गुरु की ज्यादा नहीं होती। गुरु का जन्म स्थान किधर से है? भक्तों के बीच में से है कि वह आकाश से टपक जाते हैं? भक्तों के बीच में से है ना। तो भक्तों को गुरु बनने की सही शिक्षा, भक्तों को सच्चे भक्त बनने की सही शिक्षा घर में बैठने से होगा क्या? पाठशालाओं में अपने बच्चों को संस्कार देने से होगा? और आप लोग क्या काम कर रहे हैं? अपने बच्चे अंधकार में चले जाएंगे अगर पाठशाला हो ना हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता पिताओं की, वो अपने बच्चों को प्रेरणा दें। क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या अपने बच्चों को ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं चाहिए, सच्चा संस्कार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा? अपने बच्चों को तैयार करोगे ना, पाठशाला शुरू करवाएंगे ना। ये होना है, क्योंकि कल के दिन आपके समाज में से ही कोई बच्चा बाहर आकर गुरु बनता है, और वो गुरु ठीक नहीं निकला तो समाज को कौन सी दिशा प्रदान करेगा? तो ये आपके लिए इष्ट है क्या? आप माता पिता हैं, अभी कुछ उम्र है आपकी, कल के दिन वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था में कोई सच्चे गुरु मिले, समाधि मरण हो, अच्छा पथ मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा रास्ता मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ये कामना भी आप करते हैं, ये भावना भी आप रखते हैं कि मुझे अंतिम समय में समाधि मरण हो। रोज भजन भी पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, कौन सा वो समाधि मरण पाठ, कौन सी लाइन है वो, हाँ कम से कम समाधि मरण हो, ऐसा शब्द आया है ना, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, और आगे शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर लूं, समता का भाव रख कर सबसे क्षमा कराऊं, और त्यागूं आहार पानी। ये पाठ हम पढ़ते हैं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर लूं। दुनिया में शत्रु कौन, हमारे, हमारा अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है, और इस अज्ञान को दूर करने की क्षमता गुरु के पास होती है। तो सच्चे गुरुओं को जन्म देने का स्थान पाठशाला है क्या घर है, सोचो, पाठशालाओं से ही सच्चे गुरुओं का जन्म होने वाला है। उन्हीं पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा निकलेगा जो वैराग्य होगा और निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लेगा, ज्ञानी बनेगा, तपस्वी बनेगा, और समाज के लिए यथार्थ धर्म का उपदेश देगा। ऐसे गुरुओं की संख्या अगर भारत में न बढ़े तो यह भारत गारत बन सकता है। ऐसे गुरुओं की संख्या बढ़े जो गुरु यथार्थ पथ प्रदर्शक हैं, यथार्थ धर्म की रक्षा करते हैं और यथार्थ धर्म का ही उपदेश देते हैं और यथार्थ धर्म की ओर ही आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, भव्य जीवों के कल्याण के लिए वे प्रयास करते हैं। अपन अब चर्चा करते हैं 41 कर्म प्रकृतियों का बंध और आश्रव कामना के कारण से होता है, तो वो 41 कर्म कौन कौन से हैं, जरा कल के पेज को निकालेंगे, कौन सा पेज था, 42, पांचवा प्रश्न है, सबसे पहले वाला ऊपर का, मिथ्यात्व की प्रधानता से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है और वे कौन सी हैं। इन प्रकृतियों को एक एक करके अपन समझते जाएंगे। ये पाप कर्म हैं, अनादिकाल से तो बहुत बार बंधे हैं, बनते ही जा रहे हैं। जब तक जीवात्मा ज्ञानी नहीं बनता, धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाता, सच्चा ज्ञान प्रकट नहीं कर पाता अपने आप में, तब तक ये 16 कर्म प्रकृतियां तो बंधेंगी ही। वे 16 कौन कौन से हैं पढ़ेंगे, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, एक एक को समझेंगे भी। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व किसको कहते हैं, विपरीत मान्यता का नाम, और विपरीत हो करके मानने वाला कौन, अपना ज्ञान ही है, ज्ञान ही विपरीत बनता है, ज्ञान ही विपरीत बन करके असत्य को सत्य मान बैठता है, विपरीत को सही मान करके बैठ जाता है और वह उसी रूप में श्रद्धालु बन जाता है। श्रद्धा करने वाला कौन? ज्ञान ही है। जो जानता है वही श्रद्धा करता है, जो जानता है वही मानता है। मानने का काम और श्रद्धा करने का काम, जानने का काम, ये सब ज्ञान ही कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना? अपने आत्मा के भीतर जो ज्ञान है, ज्ञान शक्ति, जानने और देखने की शक्ति है, उसी का सब ये काम है। श्रद्धा भी वही करता है, किसी विषय को मानता है, मान्यता बना लेता है, तो वो ज्ञान का ही काम है। ज्ञान ही गड़बड़ है और ज्ञान ही सही है। ज्ञान अगर अज्ञान में है तो सारा गड़बड़ है, और ज्ञान यदि वास्तव में समीचीन मार्ग को और दुर्मार्ग को, उन्मार्ग को, सन्मार्ग को समझ चुका है, तो ज्ञान ही रास्ते पर लग करके सही रास्ते पर, ज्ञान ही अपना कल्याण करता है। कल्याण और अकल्याण क्या है? ये सच्चा ज्ञान कल्याण का रूप है और मिथ्या ज्ञान अकल्याण का रूप है। मिथ्या ज्ञान के कारण से आत्मा दुखी हो जाती है और सम्यक ज्ञान के कारण से आत्मा सुखी हो जाती है। मिथ्या ज्ञान को त्यागना है, मुझे दुख का कारण है, ऐसा समझकर सुख के मार्ग को खोजने वाला भी कौन? ज्ञान। ज्ञान ही खोजेगा, ज्ञान ही खोजेगा और ज्ञान ही खोज रहा है। तो ज्ञान यदि सच्चे ज्ञान को संपादन कर लिया, संग्रह कर लिया, ज्ञान के लिए वह सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो भटकेगा क्या? नहीं भटकेगा। ऐसे ज्ञान को ये 16 कर्मों का बंध नहीं होता। ये 16 कर्म बंद अवस्था को प्राप्त नहीं होते। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको बंद नहीं करना तो ज्ञान को संभालना है। मिथ्यात्व आदि ये 16 प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्ता श्रपाटिका संहनन, एकेंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरेंद्रिय जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ये सभी प्रकृतियां कामना को लेकर जो मंदिर में जाएगा उनके लिए नियम से बंधते हैं। उसमें से पहला है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ क्या? जो कर्म उदय में आने के बाद हमारे ज्ञान को विपरीत कराता है, उसका प्रभाव ही ऐसा रहता है इस कर्म का कि यह उदय में आने के बाद हमारी बुद्धि उल्टी हो जाती है, असत्य को सत्य मानने लगती है और सत्य को ही असत्य मानने लगती है। ऐसी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अपनी बुद्धि को भ्रमित करने की शक्ति इस मिथ्यात्व कर्म में है, जो पहले नंबर का है, और इसका बंध कामना के काल में होता है। इसलिए कामना का रास्ता त्याग कर भावना का रास्ता चलना ये हम सबका कर्तव्य होता है। मिथ्यात्व प्रथम कर्म है। दूसरा हुंडक संस्थान, इसका क्या अर्थ है किसी को मालूम? ये भी एक कर्म है, नाम कर्म में से एक कर्म है। ये मिथ्या तो पहला वाला मिथ्या तो कर्म कौन सा कर्म है? आठ कर्म में से मोहनी कर्म, पहचान में आ गए ना, मिथ्या तो मोहनी कर्म है, और हुंडक संस्थान कौन सा कर्म है? ये नाम कर्म है। नाम कर्म के कितने भेद हैं? त्रयाणु भेद हैं, उसमें से एक भेद ये भी है, संस्थान चार प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के संस्थान होते हैं, संहनन भी छह प्रकार के होते हैं। संस्थान का मतलब जीव को कर्म के फल स्वरूप जब शरीर की प्राप्ति होती है तो छह तरह की प्राप्ति होती है, अलग अलग प्रकार की। जिसको संस्थान नाम कर्म का बंद हुआ हो वो छह प्रकार से बंद हो सकता है, और उसमें यदि हुंडक संस्थान के कारण से शरीर मिल रहा है जन्म के काल में, हुंडक संस्थान के उदय के कारण शरीर की प्राप्ति हो रही है, तो किस टाइप की शरीर मिलेगा? टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, यानी कोई भी अंग उपांग ठीक ठाक नहीं रहेंगे, और ऐसा संतान किसी के यहाँ जन्म लेता है तो माता पिता कितने दुखी होते हैं, कैसे कैसे जन्म लेते हैं। कभी कभी पेपरों में भी आता है, सकाल में आपके उसे कौन कौन से पेपर आते हैं, बहुत सारे, उनमें समाचार आते हैं फलाने देश में फलाने परिवार के यहाँ एक संतान का जन्म हुआ और वो ऐसा था। जॉइंट भी पैदा होते हैं, दो जीव एक साथ, और जॉइंट ही रहते, जन्म लेने के बाद अगर उसको तोड़ दें तो दोनों मर जाएंगे, और अगर ऐसा ही रखें तो वो जीवन जी सकते हैं, ऐसे भी जन्म लेते हैं। ये किस कर्म का फल से? ये हुंडक संस्थान नाम कर्म के उदय से ऐसा होता है। या अकेला भी जन्म तो कोई अंग उपांग एक भी ठीक नहीं है ऐसा जन्म लेता है, हाथ पांव भी टेढ़े हैं, दुबले पतले हैं, और छाती भी आगे आई हुई है, और पेट झुका हुआ है, ऊपर देख नहीं सकता, चेहरा बिल्कुल विकृत है, आंखें ठीक नहीं, नाक भी ठीक नहीं, ओठ भी ठीक नहीं, कान भी जिस किसी प्रकार से टेढ़े मेढ़े हैं, कोई एक भी अंग उपांग समान न हो, सुंदर न हो, टेढ़े मेढ़े हो, असुंदर हो, तो ये किस कर्म का फल है? ये हुंडक संस्थान नामक नाम कर्म का फल है। ये कर्म कब बंधता है, किस काल में बंधता है? कामना रखकर धर्म करते समय, मिथ्यात्व का उदय रहता है। तो इतने 16 प्रकृतियों का जो बंध होता है पहले गुणस्थान में होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। पहले गुणस्थान में 16 कर्मों का बंध होता है, उसमें मिथ्यात्व का उदय रहता है, तो हुंडक संस्थान भी बंधेगा, नपुंसक वेद भी बंधेगा। देखो, जीव नपुंसक होकर के जन्म लेते हैं, ये नपुंसक वेद कौन सा कर्म है 8 कर्मों में से? लगाओ पता, मोहनी कर्म। मोहनी कर्म में किस कर्म के अंतर्गत आता है? देखो, मोहनी कर्म दो प्रकार का, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी कर्म तो तीन ही प्रकार के हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनी 25 प्रकार के, ऐसे 25 और ये 3, 28 प्रकार का है मोहनी कर्म, टोटल 28 प्रकार का, इससे ज्यादा नहीं और न कम है। तो दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं और चारित्र मोहनी के 25 भेद हैं। उन 25 भेदों में भी दो बंटवारा करना चाहिए, दो ग्रुप करना चाहिए। हाँ, कषाय मोहनी और नो कषाय मोहनी या अकषाय मोहनी, नो कषाय और अकषाय एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। कषाय चारित्र मोहनी कर्म और नो कषाय चारित्र मोहनी कर्म, इन दो में से ये जो नपुंसक वेद है, कषाय मोहनी कर्म है क्या अकषाय मोहनी कर्म है? अकषाय है, एक अकषाय में आता है। अकषाय मोहनी कर्म नौ प्रकार का है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। नपुंसक वेद आ गया लास्ट वाला। ये नपुंसक वेद एक कर्म है, अकाशाय में से एक कर्म है। ये नपुंसक वेद का बंध किस गुणस्थान में होगा? पहले गुणस्थान में। और पहले गुणस्थान में रहने वाले जीव को ज्ञानी कहा है क्या अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी किस कारण से है? कामना के कारण से या भावना के कारण से? यदि कामना को छोड़कर भावना करने लग जाएगा तो पहले गुणस्थान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सम्यक दृष्टि बनेगा, उसका चौथा गुणस्थान हो जाएगा। भावना करेगा तो चौथा गुणस्थान, और कामना करेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीन में से कोई गुणस्थान हो सकता है। कामना तीसरे गुणस्थान तक ही रह सकती है, इसके आगे कामना नहीं रहती, क्योंकि चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। वह ज्ञानी माना जाता है, समझदार माना जाता है, स्वाध्याय करता है, जानता है वो जिनेन्द्र भगवान के वचनों को, जिनवाणी का वह स्वाध्याय करता है, उसको ज्ञान है। इसलिए चौथा गुणस्थान हो गया। चौथे गुणस्थान में भावना होती है, कामना नहीं होती। पहले गुणस्थान में कामना होती है, उसी कामना के कारण से इतने सारे कर्म के बंध। ये तो 16 हो गए, नीचे कितने हैं? ये 25 हैं। अनंतानुबंधी कषाय के कारण से 25 का बंध होता है, और मिथ्यात्व के कारण से 16 का बंध होता है। आया समझ में? कामना सहित जीव को कितने कर्मों का बंध होता है? 16 का और 25 का, टोटल मिलाकर 41 का बंध होता है। तो इन कर्मों का स्वरूप भी समझ करके अपने को रखना पड़ेगा, ताकि इससे बच सके, इन कर्मों के बंध से बच सके। पाप कर्म बांधना अच्छा है या बुरा है, कैसा लगता है? हैं? बुरा लगता है ना। पाप कर्म न बंधे, लेकिन पुण्य कर्म का फल तो बहुत अच्छी तरह से मिले। ये जीवों को ऐसे भाव होते हैं, पाप कर्म करूं लेकिन फल कैसे मिले? पुण्य का फल मिले। करता है पाप और फल मांगता है पुण्य का, बोता है बीज बबूल का और मांगता है अपूस आम को। अपूस आम, उसमें भी हाईएस्ट मिलना चाहिए। अपूस का आम, ये कैसे हो सकता है? जैसे भाव रहेंगे वैसे ही कर्म बंधेंगे, और जैसे कर्म बंधेंगे वैसे ही उनका फल मिलेगा। ये तो गणित है, ये तो सिद्धांत है, नैसर्गिक नियम है ये सारे के सारे। यदि संतान की उत्पत्ति हुई और हुंडक संस्थान के फलस्वरूप टेढ़ा मेढ़ा उसका अंगोपांग रहा, तो कितना बड़ा दुख होता है माता पिताओं को, ऐसा संतान क्यों हुआ, क्यों, हे भगवान मैंने क्या किया था। तो सोचो उसमें क्या किया था, माता पिताओं ने क्या किया था, और उस जन्म लेने वाले जीव ने क्या किया था, कामना किया था, कामना तो किया ही था दोनों ने, और उसलिए उस कारण से बंद हुआ है। परंतु माता पिताओं ने ऐसा क्या किया होगा जिसके कारण से इसी संतान की उत्पत्ति हो गई? कोई दूसरा कारण भी हो सकता है ना। अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी थी, और शिक्षा देने से ही रोक दिया था, यानी पाठशाला में नहीं भेजा था। ऐसे माता पिताओं को ऐसी संतान की उत्पत्ति होती है। अशुभ कर्म का बंद होगा कि नहीं, ज्ञान में विघ्न डाला कि नहीं अपने बच्चों को, वो सीख सकते थे, वो सुधर सकते थे, उनका भाव भाव सुधर सकता था। अब छोटे मोटे विषयों का विचार करते हैं, उसका वो है ट्यूशन है और वो है ये है कह करके, ये ट्यूशन आदि, ये जो ज्ञान मिल रहा है, लौकिक शिक्षण मिल रहा है, ये तो शरीर सुख के लिए है, एक भाव के लिए है, आगे आने वाला नहीं है। आपका बच्चा बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर भी बन गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, पैसा ले आएगा घर, क्या धर्म ले आएगा, क्या सम्यक ज्ञान ले आएगा, क्या पुण्य कर्म ले आएगा, क्या भावना ले आएगा, कामना लाएगा, क्या भावना लाएगा, ज्ञान ही नहीं है ना, तो कामना ही कामना रहेगी और उस कामना से कुछ नहीं होना है। और ऐसे माता पिता को ऐसे संतान की उत्पत्ति होने से रोते हैं, हे भगवान मैंने ही क्या किया था ऐसा, तो तुमने ही तो किया था पहले। भगवान थोड़ी शिक्षा दे रहे हैं, भगवान थोड़ी ही दंडित कर रहे हैं माता पिताओं को, तुमने गलत किया था और ऐसे संतान मैं भेज रहा हूं गर्भ में, ये भगवान का काम है क्या? अब भगवान के सामने रोने से अब क्या होगा, जब चूक रहे थे तब जागे नहीं, अब भगवान के मंदिर में जाकर रोने से धोने से क्या होगा, गुरुओं के पास जाकर के भी आप मंत्र तंत्र भी लोगे, आप मंत्र तंत्र काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो पूर्व में भाव किया था कर्म का बंद हुआ था, जैसा फल मिल रहा है उसको शांति के साथ अब भोगना पड़ेगा। एक बात और होती है, ऐसी संतान गर्भ में आई तो अस्पताल पहुंच जाते हैं और उसका परीक्षण कर लेते हैं, पहले मशीनरी नहीं थी ऐसी, लेकिन अब मशीनरी भी आ गई कि गर्भस्थ जीव का शरीर अंगोपंग किस टाइप का है सब बता देता है वो, और उसको देखने के बाद फिर माता पिता घबरा जाते हैं, ऐसी संतान की उत्पत्ति हो गई तो क्या करूं, इस घबराहट में निर्णय लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं मालूम है, ये दोबारा ये दूसरा बड़ा कर पाप है, पहले भी किया था पाप, अब इस समय में भी एक एक्स्ट्रा पाप कर रहे हैं, और ये पाप करके बैठ गए तो इसका परिणाम क्या होगा भावी काल में, पंचेंद्री जीव की हत्या, एक मनुष्य की हत्या, वो जीने के अधिकार से आ रहा था, जैसे भी जीना है वो स्वतंत्र जीवन लेकर के आ रहा था, लेकिन आपके लिए तो वो भार हो गया ना, आपके लिए भार हो गया, अब आपके मन में जो विचार आएंगे वो विचार अच्छे हैं क्या, डॉक्टर डॉक्टर का काम करता है, फैसला दे देता है, ऐसी संतान है क्या करना आप जानो, आपके ऊपर छोड़ देता है वो। और तुरंत आप दुखी होते हैं, तुरंत, ये सब अज्ञान के कारण से होता है। जिसके घर में सम्यक ज्ञान नहीं, धर्म नहीं, पाठशालाएं नहीं, धर्म की शिक्षाएं नहीं, वो घर किसी भाव में भी सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि सब धर्म भावों का खेल है, और ज्ञान से ही बंद होता है और ज्ञान से ही निर्जरा होती है, ज्ञान से ही धर्म होता है और ज्ञान से ही अधर्म होता है, सब ज्ञान का ही काम है ये। ज्ञान अगर सही है ना तो ऐसे संतान की उत्पत्ति क्यों हो, ऐसे कर्म क्यों बंधेंगे। समझ में आता है? आता है, अभी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, थोड़ा नहीं, अब तो शाश्वत रूप से समझ में आना चाहिए और अपने को धर्म का सहारा न छोड़ना चाहिए, न किसी को छुड़ाना चाहिए। आप बच्चों को छुड़ाकर बहुत अन्याय कर रहे हैं, करो 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 और करो। हम अब दोबारा नहीं कहेंगे कि पाठशाला खोलो और बच्चों को पाठशाला में भेजो, करो और पाप करो। इसी भाव में आपको दिखाई देगा उसका फल क्या है। छोटी अवस्था में यदि अपनी संतान धर्म से सुशिक्षित न हो, धर्म का ज्ञान न मिले, तो बड़े बनने के बाद तो आपके ही दुश्मन बन के बैठ जाएंगे। अपनी संतान अपनी दुश्मन बन जाएगी। आपको विश्वास है कि अपनी संतान दुश्मन नहीं बनेगी? गारंटी है? विश्वास रख सकते? किसी के हाथ में ऐसा पावर है कि हम दुश्मन बनने नहीं देंगे? नहीं। इसके लिए गुरु ही समर्थ, पाठशालाएं ही समर्थ हैं। बचपन में अगर सम्यक ज्ञान का संस्कार अगर संतान में पड़ गई तो भव भव के लिए नींव पड़ गई। भव भव के लिए, एक जन्म के लिए नहीं बल्कि कई भवों के लिए अच्छा नींव डाल दिया हमने। वो जीव एक बार सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है तो किसी भव में पाप कर्म को बंद करने का ऐसा दुष्कार्य करेगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और वह जीव पुण्यात्मा जिसने पाठशाला में पढ़ करके किसी के गर्भ में आया तो उसका अंगोपांग टेढ़ा मेढ़ा रहेगा क्या? और उसके माता पिता जिसके घर में वह चला गया, उस माता पिताओं ने ऐसी गलती की है क्या पूर्व भव में कि उनके संतान के लिए उन्होंने ज्ञान नहीं दिलाया था, धार्मिक ज्ञान? ऐसा दुष्कार्य किया था क्या? नहीं किया था। उसने पाठशाला में भेजा था, उसका फल है कि आज हमारे गर्भ में जो संतान पल रहा है वो व्यवस्थित आया है। और व्यवस्थित आया है तो डॉक्टर के पास भी पहुंचने की जरूरत नहीं, और पहुंच गए तो डॉक्टर क्या कहेगा? तुम्हारे संतान तो तुम्हारे भाग्य के उदय से, पुण्य के उदय से बहुत बढ़िया है, भाग्यशाली है माता पिता, यही कहेगा ना। सोचो समझो, इतने अज्ञानी मत बनो। पाठशाला की व्यवस्था होना, सबको जागृति होना, घर घर में जागृति आना चाहिए। अपने बच्चों को जिनेंद्र भगवान की वाणी की शिक्षा मिले, भव भव के जन्म जन्म के कर्म सुधरे, भावी भव सुधरे और वर्तमान भव भी सुधरे, ये भावना रखना है। अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे चर्चा करिए, क्या समस्या आ रही है। व्यक्तिगत आकर के भी चर्चा करें और सामूहिक रूप से भी आप समस्या रख सकते हैं। पाठशाला बंद हो गई, आश्चर्य है, इतनी अच्छी चलने वाली पाठशाला बंद हो गई, मुझे तो ताजुब लग रहा है। धार्मिक नगरी, पुसद नगरी और यहाँ पाठशाला एकाएकी बंद हो गई? नहीं, टाइम हो गया है। जिनवानी विचार करे, चिंतन करे, निर्णय ले। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।